आज हम देखेंगे कि मैदान-ए-महशर में सच्चे मोमिनों के साथ क्या होगा, और ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी हम जिंदा हैं और हम ये टॉपिक सुन रहे हैं। ये ऐसी है कि जैसे अभी तो वक्त है कोई चीज़ करने का, नहीं होंगे तो कर लेंगे। आज के बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद हम अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करवा लेंगे, अल्लाह से कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे, उम्मीद रखेंगे, किसी को कहेंगे हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो के आला दर्जों में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ईमान बिल गैब। ये है जी हमारी मेन सीरीज और इसका सब टाइटल है ईमान बिल आखिरा। और आज उसमें से भी जो टॉपिक अंदर हमारे पास है वो बहुत खूबसूरत है, और वो क्या है कि क़यामत के दिन मैदाने हशर में सच्चे मोमिनों के साथ क्या हो रहा होगा। तो जिन लोगों ने दुनिया में अमल किए, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहे, अल्लाह ताला के फ़ैसलों को दिल की खुशी से मान लिया, जिन्होंने इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन पे अमल किया, कोई ना तो है ही नहीं जो कह दे अल्लाह जी जो कहेंगे ठीक है। कभी अपने छोटे छोटे काम करने वालों को देखा करें, ड्राइवर, माली बाबा, आपके घर में काम करने वाली खवातीन, जी भाजी, एक जी नहीं कहती, जी, आपके, अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह उन सबको सलामत रखे जो आपकी और हमारी खिदमत करते हैं। लेकिन मैं अक्सर उन लोगों को ना ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, दिन में कॉल कर लें, शाम में कर लें, कभी गुस्सा नहीं करेंगे कि भाजी आपने क्या किया, मैं सो रहा था और आपने मुझे कॉल कर दी, बल्कि हम गुस्सा करते हैं अगर वो बेचारा दूसरी तीसरी बेल पे फ़ोन ना उठाए। कितने पैसे आपका मेरा, शायद एक दिन का दो दिन का खर्चा, उनकी पूरे महीने की वे होती है, एवरेज बात कर रही हूँ। लेकिन इतने थोड़े से पैसों के लिए हमारे साथ लगे हुए अल्लाह ने जिनकी ज़रूरतें हमारे साथ लगा दी, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया, उनकी आजजी और फिर हमारी आजजी, हमारा अल्लाह के सामने मुकाम, हम वाकई अल्लाह के सामने उसी तरह झुकते हैं। आपने एक वाक्या कई बार सुना होगा, कहते हैं कि इब्राहिम बिन अदम एक आम इंसान थे, यानी उनके पास अभी वो ईमान और तकवा नहीं था जो इल्म का तोहफा होता है। एक गुलाम खरीद के लाए कुछ पैसों में, घर लाए, कहने लगे कि अच्छा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो अब उसका जवाब सुनिए और अपने आप को पूछिए। कहने लगा, साहब गुलाम का क्या नाम होता है, आप मुझे जिस नाम से पुकारेंगे मेरा वही नाम होगा। एक दिल में ना उसकी जगह बनने लग गई, कितना अच्छा। लेकिन अब बादबा नसीब, कहते हैं गुड़ दो ना दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो, कई गुड़ भी देते हैं और बात करेलों की दराकी कड़वी करते हैं, तो अमल ले लीजिए अपने लिए। किसी को कुछ देना है कि नहीं देना ये आपका फैसला है, किसी के साथ अच्छा मामला रखना है कि नहीं रखना आपका मामला है, कुछ भी करें लेकिन बुरी बात ना करें। आज सब एक जुमला बोलते हैं, मैं भी और आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, लिखिए, मैं हमेशा नरम अंदाज से बात करूंगी, मेरे बगैर बोले किससे, जो मुझसे नरमी से बात करेगा। ये सब में कौन कौन है, चलें बच्चों से शुरू करते हैं, बोलें जुमला, अब फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे लिखिए। मैं हमेशा, नहीं, दिल्ली नहीं कर रहा, माएं खामोश हो गई हैं, चलें बोलें, मैं हमेशा अपने बच्चों से नरम अंदाज में बात करूंगी, बोलिए जरा, दिल पे हाथ रख ले, वो चाहे कुछ भी करें। कितनी खवातीन जो इस वक्त कह रही हैं, दिल से सोच रही हैं कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, छोटे बच्चे तो और तरह का तंग करते हैं ना, खपाते हैं, चीजें उठाते हैं आपकी, आपके कुशन टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। लेकिन जरा बड़े बच्चे और टीनेजर बच्चा, वो बच्चे जिन पे आपको कचीचियां चढ़ती है ना, जिनके आगे आप बोल नहीं सकते, आप पाँव पटकते हैं, उनको तो सफर में लाएं। चलें, टीनेजर बच्चों को जहन में लाएं। बड़े बच्चे, आप बोले ये जुमला, बोले अपने बड़े बच्चों से करके देखिए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकूलु लिन्नासी हुस्ना। ये बड़ा आसान लगता है जब लोग भी हमसे ऐसी हसीन बातें कर रहे हैं, लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं, लोग हमारे गुण गा रहे हैं, लोग हमें बहुत प्रोटोकॉल दे रहे। जी, उस वक्त हमारे ड्राइंग रूम मैनर तो कोई देखे, फोन पे बात करते हुए और फोन बंद करके घर वालों से बात करते हुए टोन फर्क होती है, फर्क होती है ना। हालांकि हमारे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? घर वाले, घर वालों पे रहम कीजिए, करेंगे। चलिए एक और जुमला बोलिए। मैं अपने शौहर से हमेशा मोहब्बत से बात करूंगी, चाहे वो सब्जी लाए ना लाए, गोश्त लाए ना लाए, आपने कहा टमाटर ले आए, वो गाजर लेके आ गए। क्योंकि हम खवातीन का सबसे ज्यादा जो दिल करता है ना, वो ये करता है कि मेरे शौहर मेरी हर बात माने, और वो नहीं हो सकता। ऐसे एक शौहर था, कहते हैं लतीफा ही है वैसे तो, बेगम ने उसको दो नोट दिए, 100 100 रुपए के, जाओ 100 रुपए के टमाटर और 100 के आलू ले आओ। अब पता नहीं यहाँ कितने मिलते हैं, पाव पाव ही आएंगे शायद। चले, काफी देर लगाने के बाद वो वापस आ गया बेचारा, ना टमाटर ना आलू, नोट हाथ में पकड़े में। क्या हुआ भाई? कहते बेगम, मुझे याद नहीं रहा कि किस 100 के नोट के टमाटर। या आप हंस रहे हैं, ये कहीं आपका ही केस तो नहीं? तो इतनी तो इजाजत दे दें कि आप जिस मर्जी 100 के नोट के टमाटर और जिस मर्जी 100 के नोट के आलू ले आए। देखिए, लोगों को स्पेस दीजिए, हम स्पेस नहीं देते, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मेरे साथ बैठने आए हैं ना, तर्स तो आप बाद में भी सुन सकते थे, उनसे भी सुन लेंगे। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो लोग जो मेरे सामने बैठे हों, उनको एटलीस्ट 2 3 टिप्स तो मैं ऐसी दूँ जिसके बाद जब आप घर जाएं तो आपके घर वाले पूछें कि बेगम या मामा, आप आज कहाँ से आई हैं। एटलीस्ट तो देखिए, हमेशा अपने घर वालों के लिए अच्छे हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लियाहली व अना खैरुन लियाहली। तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अब हम अपने मर्दों से अगर ये ख्वाहिश करते हैं तो उनको भी हमसे यही तवक्को होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी हर बात माने, हमारे बच्चे हमारी हर चीज़ पे लब्बाई कहें, तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। करके देखिए, सिर्फ 2 हफ्ते, जो मर्जी कोई करे, आपने अपनी टोन ऊंची नहीं करनी। मैंने इस वक्त आपको ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं करना, और ये भी नहीं कहा कि आपने घर में हर वक्त स्माइल करते रहना। सिर्फ इतनी बात कही है कि आपने अपने घर में हमेशा नरम बात करनी है। आज के बाद आपके घर से आवाज़ें ऊंची ना हो। बिलफर्ज घर में किसी एक को गुस्सा आ गया, छोटे बच्चों को गुस्सा आता है, कभी बड़ों को आता है, बुजुर्गों को तो बहुत ही आता है। आपको तो कि आप में से तो कोई नहीं बुजुर्ग, आप में से जो 60 प्लस लोग हैं या बात में सुनेंगे, यहाँ आप नहीं आ सके। बुढ़ापे की नेकी नमाज रोज़ा नहीं है, वो तो अच्छी हो ही नहीं पाती। हम में से अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो ऐसी उम्र के लोग हैं उनके घर वाले क्या कहते हैं, अब तो मैं नमाज ही भूल जाती हूँ, ध्यान चला जाता है कहीं और, मैं तो नमाज में सो जाती हूँ, वुजू नहीं ठहरता। बुढ़ापे में ही कुछ होना है, अल्लाह को पता है। कुरान ने क्यों कहा बिया सनीमा आमिलू, और जगह आयते हैं जिसका खुलासा क्या है कि हम उनकी नमाजों को उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी नमाज के बराबर कर देंगे। अल्लाह को आज पता है, दुनिया में तो एवरेज निकलती है ना, अल्लाह एवरेज नहीं निकालेगा। कभी जिंदगी का कोई वक्त याद करिए, बच्चा घर नहीं आया, फोन नहीं उठा रहा, फिक्र है, परेशानी है, सो सो वसवसे आ रहे हैं, इतने में मगरिब की नमाज हो गई। अब आप उस नमाज के लिए जब खड़ी हुई तो आपके आंसू निकल रहे थे, वो जो नमाज पढ़ी थी उसमें और शादी हॉल में से उठकर मगरिब के 3 फर्ज पढ़ने में कोई फर्क था? बहुत फर्क था। उस दिन पता चला कि या कनाबुदु व या कनस्ताइन, इसका क्या मतलब है। अब वो एक नमाज प्रिजर्व हो गई, सेव कर दी अल्लाह ने वो नमाज। अल्लाह कहते हैं क्यामत के दिन हम उनकी सारी नमाजों को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको अपग्रेड कर देंगे उस एक बेहतरीन नमाज के बराबर जो उसने कभी पढ़ी थी, क्योंकि वह रहमान है, वह रहीम है। तो ये बातें तो अल्लाह करा चुका, अब तो बस खाना पूरी है। क्यों कहा बैठे खड़े लेटे क्यामन वक़ूद वला जुनूब, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन बुढ़ापे की नेकी खुश अखलाकी है। आसान नहीं होता बुढ़ापा, ना उनका जो खुद बूढ़े हैं और जिनके साथ वो रहते हैं, कि उनकी जन्नत है। बिला वजह गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक ही बात को 10-10 दफा कहना सुनना बर्दाश्त करिए। अगर उनको उस वक्त खुश मिजाज रहने में कुछ अजर है, आपको उनकी बदमिजाजी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बहुत मुकाम होगा। तो क्या पता चला कि जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में हमारी नेकियां बदल जाती हैं। अब ये तो चंद इब्तदाई बातें थी मेरे और आपके लिए। अब मैं आपको कुरान और सुन्नत से कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगी, और वो क्या कि रोज़े हशर बा अमल मुसलमानों या मोमिनों की क्या कैफियत होगी, ताकि हम भी ऐसी नेकियां करें और फ़ायदा हो। एक बात पहली लिख लें, इंसान को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा यानी डर लगता है ना, वो खौफ है। चोर का खौफ, शेर का खौफ, पकड़े जाने का खौफ, एक्सीडेंट का खौफ, बच्चे के अंदर भी अल्लाह ने ये वदियत किया होता है। आप कभी किसी छोटे से बच्चे को उछाले ना तो आंखें बंद कर लेगा, उसको डर होता है कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। उसको भी ये डर होता है कि कहीं मैं नीचे ना गिरा दिया जाऊं, वो भी अपने जिस्म को बैलेंस करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह से सच्चा मोमिन उसको अल्लाह एक तोहफा देता है, पता है आपको क्या, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो क्या हुआ कि खौफ बहुत है, आपका जो ईमान है ना और आपके अच्छे अमल हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको क़यामत के दिन के लिए लिख लें, आज खौफज़दा हो, आज फिक्र करें, वहाँ आपको कोई खौफ नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि खुद सफ़र ना करना हो तो आप एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं तो मज़ा तो बड़ा आता है, कहीं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई रो रहा है, किसी का वजन तुलता आप देख रहे हैं, कोई ट्रालियां उठा के आ रहा है। तो अगर अपनी फिक्र ना हो तो मैदान हशर में बहुत कुछ है आपको देखने के लिए, अल्लाह आपके दिलों को मुतमईन कर देगा। इसी तरह ऐसे लोग मैदान महशर में बाकी लोगों के साथ ही होंगे, लेकिन इनमें से बास लोगों को एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा, और वो क्या कि अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोग सब खड़े हैं कहीं और आपको कुर्सी मिल जाए, बाकी लोगों को अपना सामान उठा उठा के फिरना पड़ रहा है, और आपको किसी स्पेशल लाउंज में बुलाकर वो स्नैक्स दे रहे हैं। फ़र्क होता है, सफ़र में तो ये चीज़ें बहुत ही लोगों को मैटर करती हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग होंगे जिनको नूर के मिंबरों पे बिठाया जा रहा होगा, और बस अल्लाह करे आप मैं हम सब उसमें हों, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप सब उसमें हों, और वो क्या कि वो नबी सल्लम की रिफाकत में होंगे, आपकी मजलिस नसीब होगी। तो आइए ज़रा 1 2 3 करके 6 7 पॉइंट्स देने वाली हूँ, नोट कीजिएगा। जबानी सुनी हुई बात याद नहीं रहती। तो रोजे हशर बा अमल मोमिनों की, ये बा अमल लफ्ज बहुत अहम है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो अमल करेंगे, ईमान तो दिल में होता है। आप अल्लाह के कितने करीब हैं, तवक्कुल कितना है, शुक्र कितना है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद आपका अमल क्या है, ये लोग देखते हैं। तो अमल भी कर लीजिए और ईमान भी, और ये है नूरु नला नूर। अल्लाह नूरु समावाती वलर्द मसल नूर ही का मिश्कात। तो इल्म पर अमल का नूर, हिदायत पर कह लीजिए कि हिदायत देने का नूर, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। तो पहली चीज, जो पहली खूबी कयामत के दिन बा अमल मोमिनों को मिलेगी, उनकी कैफियत में से पहली कैफियत, कहले ईमान को कोई खौफ और गम नहीं होगा। आप कहेंगे दलील दीजिए, तो नोट कीजिए, बस आयतों के नंबर नोट कर ले, बाद में कुरान पाक से जाकर लिख लीजिएगा। सूरत जुहरुफ की आयत नंबर 68 से 73 है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वलांतुम तहजनून। कौन? अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना वकानू मुस्लिमीन। उदखुलुल जन्नत अंतुम वअज़वाजुकुम तुहबरून। युताफु अलैहिम बिसिहाफ मिन ज़हबिन वअकवाबिन वफीहा मा तश्तहीहि लन्फुस वतलज़्ज़ुल आयुन वअंतुम फीहा खालिदून। और ये सब कुछ दे के कहा जाएगा, वतिल्कल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून। पहला सवाल आप सबसे मेरा ये, किसको समझ आया? अभी जो आयत पढ़ी है, मैं ना तर्जुमा बताऊं, कितनों को 90% समझ आ गई ये बात? एक दो तीन, चंद हाथ, अल्लाह बरकत दे। चले बाकी लोग अपने लिए अमल लिखें, हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखना है कुरान को। और हमेशा की तरह मेरी ख्वाहिश इस मस्जिद में आके आती है कि इधर एक फुल टर्म कोर्स शुरू हो, 1-1.5 साल में फातिहा से नाज तक कुरान अपने सीने में उंडेल रहे। फिर रमजान की आमद है, फिर तरावियां आपने सुननी है, नहीं समझ आएगा? मैं कैसे इंजॉय करूंगी? फीकी चाय का मजा नहीं आता? कुरान को पढ़ना और समझना ना फीकी चाय है। तो कोशिश कीजिए, जिंदगी की घड़ियां बहुत मुख्तसर हैं, किसको पता कल क्या होगा। तो पहली ख्वाहिश के अल्लाह मुझे कुरान समझ आए ना, बहुत तफसीर में पढ़े अभी ना, आप तफसीर के टेस्ट दें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा। और मैं यहाँ माओ को भी बता दूँ, क्योंकि जो ही हमारी अपनी बात होती है ना, हमें अपने बच्चों का शौक आता है। बच्चों को कौन पढ़ाए, कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं? आप पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे अभी 9 साल से छोटे हैं तो खुद सीख लें। इससे पता चलता है कि छोटे बच्चों की माओ को जरूर कुरान सीखना है। क्यों? इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोलूंगी, लिखना चाहे तो लिख लें, मियाँ साहब से कहना है, ससुराल से कहना है, या अपने ही नफ्स को कहना है कि मैं कुरान का कोर्स क्यों ज्वाइन करूं? बच्चों वाली हूँ, घर वाली हूँ। एक औरत ने कहा कि मेरे मियाँ कहते तुम घर बैठो, बच्चे पालो, तुम लोगों को क्या पढ़ना पढ़ाना सूझ रहा है। तो बड़ी दुखी थी, मेरे पास आई, कहने कि मेरे मियाँ मुझे कहते हैं तुम औरतें क्या पढ़ने पढ़ाने लगी हो, घर बैठो बच्चे पालो। तो मैंने कहा कि एक जुमले का जवाब था, आप दे देती क्या? जी। पहले मैं अगले की बात कहा करे, जो वो कहते हैं आपके जी, यही तो सीखने जा रहे हैं। क्या आप सासों का दिल नहीं कटता अपने पोते पोतियों की गलत तरबियत पे? सच बताइए, अपने भाई बहनों के गलत तरबियत के अंदाजों पे आपका दिल नहीं कुड़ता? जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को सीधा रखेंगे ना, उतना ज्यादा अल्लाह आपको हिकमत देगा। तो क्या पता चला, कुरान सिर्फ वर्सेस टू रीड नहीं, वर्सेस टू अंडरस्टैंड, वर्सेस टू पॉन्डर, और फिर उस पर रिएक्ट करना है, अमल करना है। चलिए अब मैं आपको आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ, इंजॉय कीजिएगा। या इबाद, अंदाज कितना खूबसूरत है, जैसे आप कहते हैं मेरा बेटा, वो मेरी बेटी। अल्लाह अपने बंदों को क्या कहता है? ए मेरे बंदो, आज तो तुम पर कोई खौफ व हिरास है और ना तुम बददिल और गमजदा होगे। कौन से बंदे? सारे नहीं, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और थे भी वो फरमाबरदार यानी मुसलमान, यानी नाम के मोमिन नहीं थे, काम के मोमिन थे। नाम के आबिद नहीं थे, काम के भी आबिद है। नाम की साजिदा नहीं थी, आम जिंदगी में भी साजिदा थी। तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। इनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा। इनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करें और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएं, सब वहां होगा। कौन सा होटल है दुनिया में, मांगो क्या मांगते, कोई 5-10 स्टार होगा भी ना, वो इतना चार्ज करेंगे कीमत दे के आपका सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। जो मांगोगे सब मिलेगा। चले बस, नहीं जब सब कुछ मिल जाता है उसके बाद क्या खौफ आता है, छीन ना जाए। आप उम्रे पे जाते हैं, आप अल्लाह के घर के सामने खड़े, आपको होटल ऐसा मिला जिधर सामने आपको हरम दिखते हैं। छड़ापी मारी तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, हरम में गए तवाफ किए। अब ये खुशी है ना, सआदत, अल्लाह आप सबको नसीब करे, मुझे भी करे। लेकिन क्या गिन रहे होते हैं, हाय 10 दिन में से एक चला गया, 9 रह गए, 8 और 6-7 हो गए ना, तो फिर आप उल्टी गिनेंगे, अब 4 रह गए हैं, अब 3 रह गए हैं। ये धड़का होता है नेमतों के साथ, नेमतों के छिनने का खौफ उसकी लज्जत को खत्म कर देता है। अल्लाह कहते हैं और तुम उसमें हमेशा रहोगे, यही वो जन्नत है कि तुम अपने आमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। दूसरी नेमत, पहली कैफियत क्या है, खौफ नहीं। इसका जो मर्जी नाम दे दो, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी, बेदिली नहीं होगी, मायूसियां नहीं होंगी। आज देखिए लोग कैसे गमजदा हैं, तो वहां मोमिनों के दिल खिले रहेंगे, आप कह लें दिल में गम नहीं होगा। दूसरी कैफियत, अहले ईमान के चेहरे रोशन और तरोताजा होंगे। दलील सूरत अबस 38-39, वजूह हुई यौम इज़िम मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा। उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे जो हंसते हुए हशाश बशाश होंगे। दूसरी भी ले लीजिए दलील, सूरत क़यामत आयत 22-23, 22 और 23, वजूह हुई यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस रोज बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बारौनक होंगे आपने रब की तरफ देखते हुए। इमेजिन कीजिए, एक नमाज नसीब हो जाए ना खुशू वाली, अकेले में पढ़ी, मैं नहीं कहती हरम में जाके पढ़ी, छत पे पढ़ी भी, चंद सेकंड के लिए फील हुआ कि कान्ना का तराख हो। उसके बाद जो खुशी उठती है ना, तो सोचिए जो अल्लाह को देखेंगे। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा शौक था देखने का, मिलने आए, ये हुआ, आवाज आई, तस्वीर नहीं आई, ये नहीं, छोड़ें सब एक जैसे हैं। क्या बंदे को अपने ऊपर मान करना, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए, अल्लाह को देखने की ख्वाहिश रखे। मैं तो सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ, उस्तादों को देखने मिलने की ख्वाहिश को अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश में बदल दें। तीसरी कैफियत, ये फ्रेश फेसेस, फेशियल करा के भी वो चमक नहीं आती, पॉलिशर करा के भी नहीं आती, हाइड्रा फेशियल से भी नहीं आती, फोटो फेशियल से भी नहीं आती, ऑर्गेनिक से भी नहीं आती, गोल्ड फेशियल से भी वो नहीं आती जो महबूब को देखकर चेहरे पे चमक आती है। कोई अपना प्यारा आया हो, 4-6 साल बाद बेटा परदेश से आए, कैसा लगता है? तो जिन्होंने तो आज तक देखा ही नहीं अल्लाह को, लोग कहते पहली दफा देखने का बड़ा शौक होता है, तो हमने तो अल्लाह को जब भी देखना है पहली दफा देखना है। चलिए तीसरी कैफियत, ये बहुत यूनिक है, मैं तो इसको सुनकर खुश हो गई थी। और वो क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले हदीस सुनाती हूँ फिर टाइटल दूंगी, यौमुल क़ियामति अलल मोमिनीना कक़दरी माँ बैन जुहरी बलस्र, समझ आ गई होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत का दिन अहले ईमान के लिए जोहर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर होगा। तो क्या है अगली कैफियत? रोज़े हशर अहले ईमान के लिए चंद लम्हों का होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दलील कुरान से लीजिए, मुतफ़िफ़ीन आयत 6, यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस रोज लोग रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े होंगे। इसकी तफसीर करते हुए उलमा कहते हैं, वो दिन ऐसा बड़ा होगा कि इसका निस्फ हिस्सा दुनिया के हिसाब से 50,000 साल का होगा, लेकिन इसके बावजूद मोमिन के लिए ये कम होकर इतना रह जाएगा जितना सूरज ढलने से गुरूब होने का वक्त है। अल्लाह मुझे आपको इसमें करे। पहली रिवायत सिलसिला तो सहीहा की थी, और ये वाली तरगीब और तरहीब इब्ने हब्बान और मुस्नद अहमद की है। अगली कैफियत, 7 तरह के लोग हशर के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। सबको हदीस ऑलमोस्ट आती है। हवाला ले लें, हजरत अबू हुरैरा बुखारी की ये रिवायत है किताबुल आज़ाद में, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला मैदाने हशर यानी रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जबकि इसके अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा। और वो 7 कौन से? पहले तो अपना नाम लिखे, मैं 7ों बोलूँगी, चेक करिएगा, क्या बताओ 7ों में हो? पर अल्लाह करे ऐसा ही हो। आदिल हुक्मरान, अब हम आदिल हुक्मरान तो नहीं है, लेकिन एक आदिल माँ, आदिल बीवी, ससुराल और महके में अदल, जो भी समझ ले। नंबर 2, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अपने रब की इबादत में गुजारी। नंबर 3, वो जवान जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा। नंबर 4, वो 2 आदमी जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, और इसी पर वो इकट्ठे हुए और इसी पर वो जुदा हो गए। अल्लाह हमें सारी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए करने वाला बना दे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? वो आदमी जिसे किसी ऊंचे खानदान की औरत ने बुराई की दावत दी, और क्या हुआ सोचिए, दूसरे हाथ को पता न चला, दाएं हाथ से सदका किया तो बाएं को ना पता चला। अल्लाह हमें अपनी नेकियों के इश्तहार न बनाने वाला बनाए। नंबर 8, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों में आंसू बह गए। अल्लाह हमारी तन्हाइयों को पाक कर दे। आज बड़ी मुश्किल हो गई है तन्हाइयाँ पाक करनी, बिलीव में, अल्लाह रहम कर दे। एक और हदीस इसी मफहूम की, जो शख्स अपने तंग दस्त, ये आप सब सुनिए, किसी ने आपसे कर्जा लिया है, कोई माली बाबा, ड्राइवर, मेड, कोई हमसायों में, कोई बहनों में। हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि जो शख्स अपने तंग दस्त मकरूज को मोहलत दे दे या इसके कर्ज में से कुछ माफ कर दे, तो इसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देगा, और इस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। जरा सा सोचिए, अल्लाह ने आपको मुझे मौका दिया किसी की मदद करने का, खिदमत करने का, तो क्या हम उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे? ज़रा सा मेरे साथ लिस्ट को दोहराइए, अभी तक जो हमने अमल किए। नंबर 1, क्या कैफियत होगी? खौफ और गम नहीं होगा। दूसरी क्या होगा? चेहरे रोशन होंगे, शौक है चेहरे रोशन करने का, चलिए। और नंबर 3, अल्लाह के अर्श का साया होगा। इन पे गौर कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप सबके आने का आपको बेहतरीन बदला दे। छोटी सी दुआ करते हैं, चलिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक वअज़ीमि सुल्तानिक, रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़नी मिन शर्री नफ्सी। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।